الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران میں ہم آیت نمبر 68 تک کر لیا تھا، آج ہم 69 سے شروع کریں گے. فرمایا کہ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسہم وما یشعرون. اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ کاش تم لوگ گمراہ ہو جاؤ، حالانکہ وہ گمراہ نہیں کر سکتے مگر اپنے آپ کو، لیکن وہ اس پر غور نہیں کرتے. یہود کی جو ہسٹری ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مسیحی برادری ہے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، یورپ میں کیا کیا، عیسائیوں کو ہمارے خلاف جو صلیبی جنگیں ہیں اس میں کیسے ابھارا گیا، وہ ایک عجیب و غریب تاریخ ہے جس میں یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ مسلسل ان کی کوشش رہی کہ حضرت عیسیٰ کے جو فالوورز ہیں وہ گمراہ ہو جائیں. اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پھر یہی کوشش کی کہ مسلمان بھی گمراہ ہو جائیں. یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے. آگے جتنی بھی باتیں ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ ان کی جرائم کو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بلکہ ان کے طریقہ واردات کو بیان کر رہے ہیں تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اس کو سمجھ جائیں کہ یہود نے کس طرح سے پہلی امتوں کو بھی گمراہ کیا ہے اور مسلمانوں کو بھی کس طرح سے کریں گے. اور یہ عجیب بات ہے کہ پہلے مسیحی ان کے اس نقش قدم پر چلتے رہے اور اب ہم چلتے ہیں. تو پہلی بات جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تمہید باندھی ہے وہ یہ کہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں اور یہ گمراہ نہیں کر سکتے مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، یہ جملہ کئی دفعوں موقع پر آیا ہے، قرآن مجید میں آیا ہے. اس کے بارے میں لوگوں کو یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ان کو شعور نہیں ہے تو ان کا تو پھر گناہ ہی نہیں ہے. تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یشعرون کا مطلب سوچنا سمجھنا بھی ہے اور شعور ہونا بھی ہے. تو مطلب وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ غور نہیں کرتے کہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم گمراہ کر رہے ہیں کہ نہیں گمراہ کر رہے ہیں. جب کوئی آدمی کسی کو گمراہ کرتا ہے، حق راستے سے روکتا ہے، تو یہ حقیقی بات ہے کہ وہ خود بھی غلط راستے پہ چل رہا ہے. اس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں اہل کتاب. اہل کتاب سارے نہیں، ایک گروپ. ظاہر ہے کہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو سارے مسیحی سارے یہود ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں نفیس لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، اور ایک اوپر جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر اس طرح کی چیز آپ کو نظر آئے گی. تو ان میں سے ایک گروہ چاہتا ہے اہل کتاب میں سے کہ کاش تم لوگوں کو وہ گمراہ کر سکے، اور وہ گمراہ نہیں کر پاتے مگر اپنے آپ کو. تو دوسروں کو گمراہ کرنا، یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک زندگی گزارنے کا بعض لوگوں کے ہاں یہ مشن بن جاتا ہے کہ وہ حق کے راستے میں رکاوٹ بنے، وہ سچائی کے راستے میں رکاوٹ بنے. ان کی ایک ہی تمنا تھی کہ دنیا میں جو قوت، جو اقتدار، جو طاقت ہمیں حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہ ہو. وہ بھی آگے اللہ تعالیٰ بیان کریں گے. تو یہ جتنے پہلو ہیں وہ ایک ایک کر کے سامنے آ جائیں گے. فرمایا کہ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اہل کتاب، تم ان اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو جن کے تم گواہ بھی ہو. اب یہ ظاہر ہے کہ پیچھے جو بات آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات چلی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے کہ نصرانی تھے. اس میں بتایا گیا کہ نہیں، تورات اور انجیل تو بعد میں اتری ہے، تو اس لیے نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے بلکہ وہ مسلمان تھے. اور اب یہ بات ان کو پتہ تھی لیکن اس کے باوجود انکار کر رہے تھے. تو اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو جبکہ تم ان کے گواہ ہو، ان کو جانتے ہو. تو یہ پہلا طریقہ ہے اس بات کو حاصل کرنے کے لیے کہ اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کرے. اس کے لیے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ پہلا کام یہ کرتے تھے کہ وہ باتیں بھی جو ان کے نزدیک بھی صحیح ہوتی تھیں ان کا انکار کرتے تھے. ٹھیک ہے، तो मेथडोलॉजी को देखिएगा, ये दिलचस्प मकाम है कि अल्लाह ताला ने उनके सारे वो जराइम बयान किए हैं जो ऊपर वाली आयत की तफसीर बन रहे हैं कि ये चाहते हैं कि तुम्हें गुमराह कर दें। तो पहला काम क्या कि जिन बातों को जानते थे उनकी तकफीर करते थे, जो उनके ख्याल में साबितशुदा बातें थी उनका भी इनकार कर रहे थे। अच्छा नहीं, तौरात में तो ये नहीं है, नहीं नहीं अंजीलों में ये ऐसा नहीं है, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो मक्का में आए नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तो औलाद ही कोई नहीं थी, इस्माइल तो ज़िबा ही नहीं हुए, वो तो इसहाक ज़िबा हो गए थे, इस तरह की चीज़ें, हालांकि ये जानते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुछ अल्लाह ताला ने यहाँ पीछे बयान किया सूरह अल बकरा में या सूरह अल इमरान में, वो उनको जानते थे लेकिन इनकार करते थे। अब इसको एक और पहलू से देखिए कि एक होता है इनकार करना अवाम का कि नहीं मान रहे, इसका भी एक असर होता है जब पूरी की पूरी कौम एक बात को ना मान रही हो तो उसका भी एक असर होता है, लेकिन जब स्कॉलर्स ना मान रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ना मान रहे हों, तो फिर अवाम ये समझते हैं कि उनको ये बात नहीं सही लग रही तो हम इसका मतलब वाकई सही नहीं। तो ये एक दूसरा पहलू है इसके अंदर कि ये अहले किताब होने के बावजूद इनकार कर रहे थे। तो ख़ुद कुरैश जो थे वो इनको अहले किताब इसलिए कहते थे कि इनको पास नबियों की तालीमात मौजूद हैं, किताब इनके पास मौजूद है और ये सच्चाइयों को हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अब सच्चाइयों को जानने वाले जब सच्चाइयों का इनकार करें तो इसका क्या मतलब होगा कि नहीं जी इनके मुताबिक तो गलत है, देखो जी फलां आलम ने भी यही कहा, फलां आलम ने भी यही कहा कि ये बात सही नहीं है, तो इसका मतलब है कि नऊज़ बिल्लाह नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बातें नहीं बता रहे हैं। तो ये पहला उनका हथियार था कि सच्चाइयों का भी इनकार कर दिया जाए, ख़ास तौर से वो सच्चाइयाँ जिनको उनको मालूम था और अब इधर से नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे थे या पहले ज़माने में हज़रत ईसा बयान कर रहे थे अलैहिस्सलाम, तो उनका इनकार कर देना। तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि क्यों कर रहे हो जबकि तुम इसके गवाह, तुम्हें मालूम है कि ये बातें सच्ची हैं लेकिन तुम इनकार कर रहे हो। आगे फरमाया या अहलल किताब लिमा तलबिसून अलहक बिलबातिल वक्त तक तुमून अलहक वान तुम तालमून, अहले किताब तुम क्यों अल्लाह की आयतों का इनकार करते, अहले किताब तुम क्यों हक और बातिल को गड़बड़ कर रहे हो ताकि इस तरह से हक को छुपाओ। अब ये दूसरा हथियार है, दूसरी कौमों के सामने कुछ बात सच्चाई की ली उसके साथ बड़ा सा बातिल मिला दिया। अब सच्चाई तो सबको मालूम होती है बाज़ अवक़ात, उसकी सूरत आली होती है, तो बस उसके बाद फिर जो आपने बातिल है वो सच्चाई के साथ जुड़कर बातिल भी आम हो जाता है। हमारे इसमें जो जमे कुरान की रवायतें हैं उनका अगर आप दिक्कत नज़र से मुताला करें तो उसमें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। बस अबू बकर सिद्दीक ने अपना नुस्खा एक तैयार किया और ज़ैद बिन साबित से कहा कि तुम इसको पढ़ कर देख लो कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, उनका अपना नुस्खा, खिलाफत के ज़माने की बात, अपना नुस्खा उन्होंने तैयार किया और ज़ैद बिन साबित से कहा कि तुम इसको पढ़ कर देखो कोई इसमें गलती तो नहीं, प्रूफ रीडिंग की जो हम भी ये कर लेते हैं। तो उन्होंने ज़िम्मेदारी नहीं ली, तो हज़रत उमर ने जब साथ दिया दोनों ने मिलकर पढ़ा उसको, इतना वाक्या था, उसको उठा के एक पूरी दास्तान बनाई कि यमामा की जंग में 70 हफाज शहीद हो गए थे, हज़रत उमर को बड़ा डर लगा कि कुरान कहीं ज़ाया ना हो जाए, चुनाचे उन्होंने हज़रत उमर उनके पास गए अबू बकर सिद्दीक के पास, उन्होंने बड़ा कायल करने की कोशिश की। अबू बकर सिद्दीक तो पहले कहते रहे कि मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, और फिर कायल हो गए, फिर ज़ैद बिन साबित को बुलाया वो भी कायल नहीं हो रहे थे, उनको कायल किया, फिर कुरान जमा हुआ। तो उस छोटे से वाक्य के साथ पूरी एक कहानी बना दी। चुनाचे अब 13 सदियों के बाद जो कहानी है वो यही, अब कुरान के जमा की तारीख देखें तो इसी दास्तान पर खड़ी है। हालांकि नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये जुमले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद हैं कि मुसहफ़ को दुश्मनों के इलाके में ना लेकर जाया करो, अगर मुसहफ़ नहीं था तो लेकर कैसे जाते थे। यही ज़ैद बिन साबित का अपना नुस्खा मौजूद था नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के अंदर ही, चार और अनसार साहबा का नाम भी आता है। ये सारे अनसार मुहाजरीन जो हैं इनके काफ़ी लोगों का, हज़रत अली का नुस्खा मौजूद था, हज़रत इब्ने अब्बास का नुस्खा मौजूद था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नुस्खा मौजूद था, ये मौजूद इतने नुस्खे मौजूद थे। फिर ये तीनों जो बुज़ुर्ग हैं अबू बकर सिद्दीक के घर में इस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो खुद हाफिज़ नहीं है, वो जो 70 मारे गए हैं उनका गम इतना ज़्यादा है कि इनको होश ही को नहीं लग रहा कि क्या करें, अब कुरान जमा करना है, और ज़ैद बिन साबित को अगर कह रहे हैं कि तुम जाओ ढूंढो तलाश करो कुरान मजीद, ऐसे जैसे गुम हो गया हो, तो वो सारी दास्तान जो है वो सिर्फ सच के साथ, थोड़े से सच के साथ बहुत बड़ा बातिल मिलाकर एक पूरी कहानी बनाई गई है। तो ये जो तरीकाकार है ये हमारे यहाँ भी बाज़ तबकात ने अपनाया, और आप ये कह सकते हैं कि पीछे ये कौम हो सकती है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। तो या अहलुल किताब लिमा तलबिसून अलहक बिल बातिल, अब उसका क्या तरीका होता है कि हक के साथ जब बातिल को मिक्स कर देते हैं तो हक छुप जाता है। ये एक सादा सा तरीका है। हमारे यहाँ जो ये बड़ी कंपनीज बनी तो जब ये इंफॉर्मेशन की दुनिया आई है तो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती थी, पहले भी हो जाती थी, तो इन्होंने एक हल निकाला, इन्फॉर्मेशन को लीक होने से नहीं रोक सकते आप, तो जैसे ही पता चलता है कि एक इन्फॉर्मेशन हमारी लीक हो गई है तो 10 खुद कर देते हैं, ठीक है। नतीजा क्या निकलता है कि एक वो 10 आपकी 11 इन्फॉर्मेशन है, कौन सी सही है आप नहीं जान सकते, तो हक छुप जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर वो ये कर रहे थे कि जो कुरान मजीद की बातें सच्ची थीं और जो उनके यहाँ भी मालूम थी उनके साथ कुछ अपनी तरफ से बातें बढ़ा चढ़ा कर बयान करते, तो नतीजा क्या निकलता, तक तमून हक, हक को छुपा लेते थे। और छुपाते किस तरह से, वह अंतुम तालमून, इस सूरत में कि तुम जानते हो। तो अहले किताब तुम तलबीस हक कैसे करते हो बातिल के साथ कि उसको छुपा लो, हालांकि तुम जानते हो कि हक क्या है और हम बातिल क्या मिला रहे हैं। तो ये दूसरा तरीका है वारदात। मुसलमानों को और मसीहियों को हक से हटाने के लिए पहला तरीका क्या, कि सच्ची बातों का इनकार कर दो, दोनों के दरमियान मुश्तरक, यानी वही बात यहूद के पास थी वही बात नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, नहीं नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, आगे चलकर वजह भी बताएंगे अल्लाह ताला। एक पहला वारदात तरीका ये था। दूसरा ये था कि चलो हक है, बाज़ हक हौसला नहीं पड़ता इनकार करने का, उसके साथ बातिल को मिला रहे, बातिल को मिलाकर एक नई दास्तान तराश लें और उसको फिर प्रोपेगेट करें। ये हथियार दूसरा इस्तेमाल करते थे और ये जानते बूझते करते थे। अब तीसरा तरीका, वकालत ताइफतुन मिन अहलिल किताब आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला लिल्लज़ीना आमनू वजहन्नार वकफरू आखिरह। तो एक ग्रोह इन लोगों में से, अहले किताब में से कहता कि जो भी ईमान वालों पर उतर रहा है यानी सहाबा पर जो कुछ भी उतर रहा है उसको सुबह मान लिया करो और शाम को इनकार कर दिया करो। यानी पहली दफ़ा नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात सुनी, क्या बात है माशाल्लाह ज़बरदस्त बात कही, शाम को आगे यार तो हमें तो समझ नहीं आई ये बात, सुबह तो हमें लगा था बड़ी अच्छी बात है, तो सुबह इनकार मान लो रात को इनकार कर दो, बुरा ना लगे। तो मैंने बाज़ आजकल के ज़माने में मुल्हदीन जो हैं उनमें से बाज़ को भी ऐसे करते देखा है कि वो पहले लम्हे पर जब बेबस नज़र आएंगे बात मान लेंगे फिर पेंतरा बदल के आएंगे। तो पहला तरीका है वारदात क्या, कि जो सच्चाइयां हैं जो दोनों के दरमियान मुश्तरक हैं अपनी तरफ से इनकार कर दें, हमें तो नहीं पता इसका, ये तो बात ठीक नहीं लग रही। दूसरा क्या है कि हक के साथ, थोड़े से हक के साथ पूरा बातिल मिक्स कर दें ताकि हक छुप जाए, पता ही ना चले कि क्या है। और तीसरा क्या है कि सुबह बात मान लो शाम को इनकार कर दो, ठीक है। और अगर आप यूरोप और यहूदियों के जो साजिशों की दास्तान पढ़ें तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी, सारी चीज़ें नज़र आएंगी, किस तरह ने मसीहियों को परेशान किया, फिर किस तरह हमारा जो दौरे अव्वल है वो तारीख में उसको अगर आप पढ़ें तो पीछे आपको इसराइलियात नज़र आएंगी, पीछे आपको कुछ कौमें नज़र आएंगी जो शिकस्त खुर्दा थी मुसलमानों से, उन्होंने इन साजिशों को इख्तियार किया। आप ये यकीन नहीं करेंगे कि पहली पहली तफसीरें कौन लिख रहे हैं, पहली पहली तारीख कौन लिख रहा है, वो ये इसी काम के लिए। तो तरीका क्या इख्तियार किया गया कि इसमें जी 20 राय है, फलां की ये 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 है, आप बीच में जहर भी डाल दिया अच्छी बातें भी डाल दी, तो तलबीस हक बिल बातिल हो जाएगी। तो ये एक तरीका इख्तियार किया गया और बस फिर आगे रास्ता खुल जाता है। फिर अब अगली ना, हम आज बैठ के पुरानी तफसीरों में से कैसे निकालेंगे कौन सी बात हसन बसरी ने नहीं कही थी या कही थी, कौन सी बात थी मुजाहिद ने कही थी कि नहीं कही थी, कैसे निकालेंगे, बस अब वो उन बुजुर्गों के नाम पे लग गई हुई है, बुजुर्गों के नाम पे लग गई हुई है, तो आराम से हम मानते हैं, हवाले देते हैं, तबसरे करते हैं और राय कायम करते हैं। तीसरा तरीका क्या हुआ कि अहले किताब में से एक ग्रोह अपने साथियों को कहता है कि जो लोग ये अहले ईमान जिन बातों को मान रहे हैं जो इन पर नाजिल हुई हैं उनको सुबह मान लिया करो, शाम को इनकार कर दिया करो। तो अब ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये क्या हथियार है। इन हथियारों को बड़ी जहानत से तराशा गया, इंसानी नफ्सियात के साथ खुल क्या उसको कहते हैं फितने के तौर पर खेलने के लिए इससे अच्छे हथियार कोई नहीं। क्या आप किसी को परेशान करना चाहते हो, बस ये तरीके अख्तियार कर ले, उसके बाद वो बेचारा परेशान हो जाएगा, आप अपना ईमान बचा के आ जाएं या ना बचा के आए। तो अब आगे वो नसीहत सिर्फ ये नहीं करते कि तुमने सुबह मान लेना है शाम को इनकार कर देना है, ये भी कहते हैं वला तुमिनू इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, बस उन्हीं की बातें माननी है जो तुम्हारे दीन के पैरोकार हैं, दूसरों की नहीं माननी। वो अपने साथियों को कहते हैं कि यहूदियों ही की बात माननी है या मसीहियों की बात माननी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम उनकी बातें मान लो, अगर मानोगे तो सुबह मानो शाम को इनकार करो। तो अब ये जो जाहिर है कि अगर इसको आप जरा तसल्ली से बैठकर कभी प्लान बनाकर देखें कि आवाम के साथ जब ये किया जाए सादा शरीफ इंसानों के साथ तो उनके साथ क्या होगा कि जी ये आलम दीन है जी, सुबह कह रहे थे कि बड़ी अच्छी बात है, अब आप इसमें मीन मेख निकाल रहे हैं, ये तो अहले किताब हैं, इनकी बात में तो वजन है, ये तो हम शुरू से जानते हैं कि ये अम्बिया की तारीख से वाकिफ है, ये तो जानते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है, ये तो जानते हैं कि उनके वाक्यात क्या होंगे, हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो जब कुरान मजीद कह रहा है तो फिर इसका मतलब है कि नौजबिल्ला वो गलत कह रहा है, ये फ़ज़ा बना रहे थे। बीच में अब एक जुमला मोतरजा है अल्लाह ताला की तरफ से, कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, इनसे कह दो कि ये बात दुरुस्त नहीं है कि अपने दीन वालों की पैरवी करो, उनकी बात मानो जो तुम्हारे दीन के पैरों हैं, बल्कि सच्ची बात यह है कि हदायत तो अल्लाह की हदायत है, वो किसी के पास भी हो उसको मानना चाहिए, ख्वा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हो, ख्वा वो हज़रत ईसा के पास हो, ख्वा वो हज़रत मूसा के पास हो, जो सच्ची बात है वो माननी। तो हदायत अल्लाह की हदायत है, वो ये नहीं है कि जो ईसाइयों की बात है वो ईसाई माने, जो यहूदियों की बात है वो यहूदी माने, जो मुसलमानों की बात है वो मुसलमान माने, ये बात नहीं है, हदायत अल्लाह की है। तो बस ये साबित होना ज़रूरी है कि ये अल्लाह की तरफ से आई है बात, तो उसको माना जाएगा। ये जो इन्नल हुदा हुदल्ला ही, इसमें दो पहलू हैं जो वाज रहने चाहिए। एक पहलू यह है कि एक तो उनके जवाब बात का जवाब है कि अपने दीन वालों की बात माननी है, जैसे हमारे यहाँ है कि अपने मसलक की बात माननी, तो उसका जवाब अल्लाह ताला दे रहे हैं कि नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं है कि अपने मसलक की बात माननी है, असल बात यह है कि अल्लाह की हदायत को मानना है, तो अल्लाह की हदायत जहाँ से मिले वहाँ से हम मानेंगे। तो ये पहला जवाब तो ये है। दूसरा जवाब इसमें जो दूसरा पहलू है जो इसमें वाजे है करना ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, वो ये कि हमारे यहाँ ये बात मान ली गई कि दो तहरीकें हैं जो फलसफियाना सतह पे चलीं, लेकिन वो असल में मज़हब के लिए उठाई गई थी, एक ह्यूमनिज्म की और एक रैशनलिज्म की, और इन दोनों के जो बानी हैं वो पीछे से यहूद हैं, ये हैरत की बात है, या यहूद है या यहूद के पैरोकार मसीही हैं, तो यानी उनका कोई ना कोई उस्ताद, कोई ना कोई लिंक यहूद से ज़रूर बनेगा। तो ये दोनों जो हमारी मूवमेंट्स हैं ह्यूमनिज्म की, ये इस वक्त गालिब है, रैशनलिज्म और ह्यूमनिज्म, पूरा यूरोप इन्हीं दोनों के गिर्द घूमता है, सिवाय पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद इसको भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तो इन दोनों के अंदर से ह्यूमनिज्म और रैशनलिज्म में ज़्यादा साइंस रैशनलिज्म से बनती है, और ह्यूमनिज्म यह है कि बेसिक उसकी बात यह है कि जो जिसको अच्छा लगता है बस वो ठीक है। मसलन आपको लगता है कि इस्लाम ठीक है तो इस्लाम ठीक है, आपको लगता है मसीहत ठीक है तो मसीहत ठीक है, आपको लगता है यहूदियत ठीक है यहूदियत ठीक है, आपको साइंस ठीक नहीं लगती तब भी ठीक है, आपको साइंस ठीक लगती है तब भी ठीक है, आपको मज़हब अच्छा लगता है तब भी ठीक है, मज़हब बुरा लगता है तब भी ठीक है, ये ह्यूमनिज्म है, उसका एक यानी मरकजी नुकता उसका यह है। और रैशनलिज्म यह है कि हर चीज़ अकल पर पूरी उतरनी चाहिए। ये दोनों बातें जो हैं ये मज़हब की जड़ काटती हैं, दोनों बातें मज़हब की जड़ काटती हैं, क्योंकि जो रैशनेल है किसी चीज़ का, वो भक्ति होता है, वो दायमी नहीं होता, वो भक्ति हो हमेशा भक्ति होता है। कुछ चीज़ें जो हमारे अंदर अखलाक हैं और जो हमारी लॉजिक है, बेसिक लॉजिक्स जो हैं, वो तो यूनिवर्सल हैं, लेकिन उसका इतलाक हर इलाके में डिफरेंट होता है, हर ज़माने में डिफरेंट होता है। वही बात एक ज़माने के फ़लसफियों को ठीक लग रही होती है, अगले ज़माने में गलत लग रही होती है। क्यों? क्योंकि अकल का मैार तब्दील हो गया है। तो रैशनैलिटी जो है उसके कोई दायमी अज्जा नहीं होते हैं, पेज तो कुछ लॉजिक पे खड़ी है, वो तो दायमी है, लेकिन जो नतायज होते हैं वो कभी भी दायमी नहीं होते, वो भक्ति होते हैं। जब भक्ति होते हैं तो वो अपने ज़माने में असरअंदाज होते हैं, अगले ज़माने में ख़त्म हो जाते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है कि 10 साल पहले की बातें 10 साल बाद गलत साबित हो रही होती। अब मज़हब को भी इसी शान में डाल दिया जाए, तो मज़हब को अगर इसी शान में डाल दिया जाए कि ये मेरी आज की अकल पर पूरा उतरेगा तो मानूंगा, अबू हनीफा रहमतुल्लाह की अकल पर पूरा उतरेगा तो तब नहीं मानूंगा, वो तो उनका ज़माना था, मेरे ज़माने की अकल पर पूरा उतरेगा तब मानूंगा। उसका जवाब अल्लाह ताला दे रहे हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है। इन्नल हुदा हुदल्लाह, हदायत के बारे में ये साबित होना चाहिए कि अल्लाह की है कि नहीं। अगर ये साबित हो जाए तो आज के अकली मियार पर पूरी नहीं उतरती तब भी ठीक होगी, आज के अकली मियार पर पूरी नहीं उतर रही तब भी ठीक होगी। साबित ही होना चाहिए कि अल्लाह की बात है और हमने अल्लाह की बात समझ ली, ये असूल बनना पड़ेगा। क्योंकि जो आज की अकल है वो तो बस आज की अकल है। आप सिर्फ पिछले 100 साल की देख लें, मॉडर्निज्म 150 साल की, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म कहाँ से कहाँ दुनिया चली गई। यानी एक ज़माने में एक बयानिया आप लेकर चल सकते थे, अब नहीं चल सकते। अब जो आपको सही लगेगा वो आपके लिए सही है, जो मुझे सही लगा मेरे लिए सही है। कोई एक ऐसी बयानिया नहीं है जो तमाम इंसानों पे थोपा जा सके। तो ज़रा 100 साल पीछे चले जाइए, 150 साल, हर कौम अपना एक बयानिया रखती थी, ठोंसती थी अपने लोगों पर, उस वक्त वो कल अकली बात लगती थी, आज ये अकली बात लग रही है। लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक लम्हे के लिए आ जाइए इस मैदान में कि जो आपको सही लग रहा है वो आप वो भी ठीक है, जो मुझे सही लग रहा है वो मेरे लिए ठीक है, जो आपको सही लग रहा है वो आपके लिए ठीक है, तो फिर इंसान खड़े कहाँ पे हैं? कोई जगह नहीं रहेगी। कम्युनिकेशन की क्या जगह है, बातें कायल करने की, मकबूल करने की क्या जगह है? कोई जगह नहीं। तो इसलिए फिर मज़हब का क्या, हर चीज़ का, खुद साइंस यानी जो पोस्ट मॉडर्निज्म वाले हैं वो साइंस को नहीं मान सकते, क्योंकि साइंस तो ये कहेगी कि ये मरूजी हकीकतें हैं, ऑब्जेक्टिव सच्चाइयाँ हैं। वो कहेंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव सच्चाई तो होती कोई नहीं है, ठीक है। तो कोई हमारे पास जगह नहीं रहेगी खड़े होने की। तो ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि देखो, काम करने का ये नहीं है कि मेरे मसलक में कौन सी बात ठीक लग रही है, या मेरे दिमाग के मेरे दौर में कौन सी बात ठीक लग रही है, या मेरे जो दीन है उसके अंदर कौन सी बात ठीक लग रही है। असल बात यह है कि अल्लाह की हदायत तलाश करनी चाहिए। जब अल्लाह का फरमान आ जाए तो उसको मानना होगा, ये लाजमी बात है। तो ये दो बातों का जवाब है इसके अंदर। वो ये कह रहे थे कि लिमन ताबिया दीन को, जो तुम्हारे दीन का पैरोकार होगा उसकी बात मानना। तो अब क्या मतलब होता है इसका कि मसलन हम मुसलमानों का एक जहन बना हुआ है, इसमें बाज़ ईसाइयों की बातें फिट नहीं बैठती, और हम हज़रत ईसा को इब्नुल्लाह मान सकते हैं? नहीं। मेरे दीन के जो मिजाज बनाया मेरा दीन ने, उसमें हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे नहीं हो सकते, या हो सकते हैं? तो मैं अपने दीनी शऊर की वजह से हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मान सकता, लेकिन ईसाइयों के यहाँ अल्लाह का बेटा मानना कोई मसला नहीं है, वो मान रहे हैं, सदियों से मान रहे हैं, क्योंकि उनके दीन में जो फ्रेम बनाया उनके दिमाग का उसमें फिट बैठता। तो बहुत सारी बातें दीन के बनाए हुए फ्रेम में फिट बैठती हैं, बहुत सी बातें इलाकाई या ज़मानी एतबार से बनाई हुई अकल के अंदर फिट बैठती हैं। जो वो बात कितनी अकली होगी जो इमाम हनीफा और इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम इबन हज़म मान रहे थे, बहुत अकली लोग हैं, अपने ज़माने के देवकामत लोग हैं, उनको वो अकली लग रही थी, आज नहीं लग रही। यानी बाज़ ऐसी बातें इन अकलमंद बुज़ुर्गों की हैं कि आज बैठ कर लगे तो बच्चों वाली बात लगती है। यानी हैरत अंगेज बात है कि आज जो इंसानों ने अकल डेवलप कर ली है उसके लिहाज से वो बच्चों वाली बात लगती है। तो अब ये बातें जो है, ये इसलिए नहीं कि अकल उनकी कम थी या हमारी कम, नहीं, उनके फ्रेम और था, हमारा फ्रेम और है। उनका जाविया नज़र और था, हमारा जाविया नज़र और है। तो जाविया नज़र की तब्दीली हुई है। वो बहुत अकल बालिग ज़हीन लोग थे, अपने ज़माने के मेयारात अकल पर बिल्कुल सही बातें कर रहे थे, लेकिन अब हमें बच्चों वाली बातें लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमने दूसरी अकल एक प्रमाण चढ़ा ली है। और ये हैरत अंगेज बात है कि बहुत लोग जो दुनिया से कटे हुए होते हैं, बस अल्लाह अल्लाह करने वाले अपनी बैठक में बैठे हुए अपने हुजरे में, और उनके ऊपर भी इसके असरात होते हैं, जदीद अफकार के असरात उन पर भी होते हैं। चुनाचे मदारस के अंदर से जो बातें आती हैं, जो अपने आप को बाजार लगता है कि मगरबी दुनिया से काट के बैठे हुए हैं, वहाँ से वही बातें आती हैं जो आज की अकल के मेयार के मुताबिक होती हैं। तो इन दोनों बातों का कि ये बात ठीक नहीं है कि मैं अपने मसलक की बात मानूंगा या अपने दीन की बात मानूंगा, ये भी बात ठीक नहीं है, और ये बात कि जो मेरी अकल में आ रही है और आपके लिए जो आपकी अकल में आ रही है वो मानी जाएगी नहीं, अल्लाह की हदायत की तलाश करनी पड़ेगी। तो इन्नल हुदा हुदल्लाह। अंग्रेज़ के आने के बाद हमने जो जदीद ज़माने की अकल है उसका फ़रोग होना शुरू हुआ। यहाँ पर अकल के बारे में दोबारा बता दूं, मैं जुमला बार बार बोल रहा हूँ। अकल का एक कह लीजिए कि मलका हम सलाहियत जो है वो हमारे अंदर वो यकसां है सब इंसानों के अंदर, उसमें फ़र्क नहीं है, वो दायमी है। लेकिन अकल से जो हम नतायज निकालते हैं, जिनको हमारे पुराने लोग कज़ाया अकलिया कहते थे या मानी हुई अकली तसव्वुरात जो हैं, मिसाल के तौर पर आज की अकल का माना हुआ तसव्वुर है कि ज़मीन गर्दिश कर रही है, ठीक है, पुराने आदमी को ये बात समझ नहीं आ सकती, ये आ जाएगी, ज़मीन हरकत कर रही है तो हम बिखर क्यों नहीं जाते हैं, पुराना आदमी इसको मान नहीं सकता। मेरे आपके लिए मानना आसान है क्योंकि बचपन में स्कूल से पढ़ा है कि ज़मीन गर्दिश कर रही है, तो हमारे लिए मानना आसान है। हालांकि ज़रा गौर करें तो हमें भी मुश्किल होगी कि अच्छा क्यों नहीं उड़ के जा रहे। उसका फिर वो जवाब देते हैं कि जी कशिश शक्ल है जिसने सब चीज़ों को मकनातीस को घुमा दें आप, तो उसके ऊपर जो लोहे के जर्रे हैं वो चिपके रहेंगे उसके साथ, ठीक है। तो हमें दोनों चीज़ों को एक मिक्स करके पुराने लोगों में समझा सकते हैं आप कि भाई इस तरह से हो रहा है मामला। लेकिन इस अकल के मुताबिक अब ज़मीन को साकिन मानना बच्चों वाली बात लगेगी या नहीं लगेगी? आज के मेयारात के मुताबिक ज़मीन को साकिन मानना बच्चों वाली बात लगेगी, लेकिन पुराने लोग मान रहे थे, उस वक्त बहुत अकली बात थी, मानी हुई बात थी, कोई उसमें तरद्दुद और शुबा नहीं था। तो उनके ज़माने के इल्म के मुताबिक उनकी बात दुरुस्त थी, हमारे ज़माने के इल्म के मुताबिक हमारी बात दुरुस्त लग रही है हमें। तो ये वो चीज़ है जो हमें बदल देती है। तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह आज होते तो ज़मीन को साकिन ना मानते, उस ज़माने में तो साकिन मान लेते हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है, इसमें जहानत का मसला नहीं होता, इसमें माने हुए अलूम का मसला होता है कि हमारी जो अकल आज है वो हमारे आज के माने हुए अलूम के मुताबिक चलती है, और जो उनकी अकल थी वो उनके ज़माने के माने हुए अलूम के मुताबिक चलती थी। ये वो फ़र्क है जिसको समझना चाहिए। इसलिए ये जो हमारे ज़माने की अकलियत है ये कभी भी दायमी मियार नहीं है, ना इसकी रोशनी में माजी को देखना चाहिए, ना इसकी रोशनी में किसी सच्चाई को मानना चाहिए। सच्चाइयाँ ऑब्जेक्टिवली अलग से साबित होती हैं कि ये है कि नहीं, उस वक्त माना जाएगा। इस एतबार से अगर हम देखें तो जो साइंस का तरीक़ाकार है इस्लाम का तरीक़ाकार मिलता जुलता है, सिर्फ वो लैब की चीज़ें हैं, ये दूसरी दुनिया की चीज़ें हैं। तो मिलता जुलता तरीका है कि हम दलाइल की बुनियाद पर बातों को मान लेते हैं और साइंस भी मान लेती है। जो आजकल की साइंस है, पुराने ज़माने की साइंस में सिर्फ हवास से चीज़ें मानी जाती थी। तो ये जो बीच में जुमला एक मोतरजा आ गया था, लेकिन उनकी बात चल रही थी, बीच में अल्लाह ने रोक के अपनी बात कर दी। वो ये बात थी कि ला तुमिनु इल्ला लिमन तबिअ दीनहु, सिर्फ उन्हीं की बात माना करो जो तुम्हारे दीन के पैरोकार हैं। और आई यूता अहदुन मिसलमा ओती तुम, कि कहीं ऐसा ना हो, इसलिए हम कह रहे हैं कि उनकी बात ना मानना जो तुम्हारे दीन के पैरोकार नहीं है, कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको वो चीज़ दे दी जाएगी जैसी चीज़ तुम्हें दी गई है। तो अब ये अल्लाह ताला बता रहे हैं उनके साजिश का तरीका क्या है, कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सारे अहले किताब ईमान ले आएं, कुरैश ईमान ले आएं, तो क्या होगा? कुरैश, बनी इस्माईल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सरदार बन जाएंगे, इमाम बन जाएंगे। इससे पहले ये सलाहियत, ये ओहदा किन के पास है? यहूद के पास। तो वो कह रहे हैं कि ये ऐसा ना हो कि तुम्हारी तुम जाकर उनकी बात मान लो और सारे लोग बातें मानने लग जाएं तो उनको सरदारी हासिल हो जाए। ठीक, तो इसलिए अगर मानो तो सुबह मानो शाम को इनकार कर दो, और अपने लोगों के सिवा किसी की बात न मानो, ये लिख कर अपने पल्ले बांध दो। और युहाजुकुम इंदा रब्बिकुम, और ये भी नहीं होना चाहिए कि तुम बातें मान आओ और फिर कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला कहें देखो ना तुमने उस टाइम टाइम पे फलां साहबी से ये बात कही थी, तुम जानते थे ना इसलिए तो कही थी तुमने, तो कहते हैं कि ये ना हो कि कल अल्लाह ताला पकड़ ले। अंदाज़ा लगाइए इनके खुदा के बारे में तसव्वुरात का, कि इससे तो डरते हैं कि एक सहाबी के सामने बात कर देंगे तो अल्लाह ताला पकड़ लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला जो दिल के अंदर निफाक है उसको नहीं पकड़ेंगे क्या। तो ये अब पूरा तरीका वारदात आपने समझा कि क्या है। दोबारा दोहरा रहा हूँ, हमारी पूरी 12 सदियों की तारीख में कदम कदम पे आपको इसके सारे हवाले मिल जाएंगे, सिर्फ इस नज़र से उठाकर देखिए। पहली बात यह कि हकायक का इनकार करते हैं, दूसरी बात यह कि हक को बातिल के साथ गड़बड़ कर दें, कतई बातों के साथ जन्नी बातें मिला दें। अब मैं अपनी तारीख का हवाला दे रहा हूँ, कतई बातों के साथ जन्नी बातें शामिल कर दें। जन्नी क्या, मैं उसको और नीचे ले, जन्नी फिर काबिले कबूल हैं, मशकूक बातें, गढ़ी हुई बातें, रदी बातें साथ शामिल कर दें। यह दूसरा तरीका है वारदात। तीसरा तरीका है वारदात कि एक बात सामने आए सुबह मान लो शाम को इनकार कर दो। हकीकी तौर पर ईमान सिर्फ अपने लोगों की बात पर लाना है, उनकी बात सुबह मानो शाम इनकार कर दो, कि ऐसा ना हो कि इनको भी वही चीज़ मिल जाए जो तुम्हें मिली हुई है, सरदारी, इमामत। और दूसरा ये कि कल क़यामत वाले दिन खुदा के हजूर ना पेश कर दें कि देखो जी उस शाम को तो इन्होंने मुझे बात कही थी, लेकिन अब कह रहे हैं कि बाद में कह रहे हैं कि नहीं कही मैंने, तो पता ही नहीं था इनको, पता था सब कुछ। सारी मिलेंगी आपको, हाँ हाँ ये तो ठीक है लेकिन, हाँ हाँ ये तो ठीक है लेकिन। और तीसरी बात ये कि कहीं इनको, तब जो लड़ाई है वो बस इस बात की है कि यहूद वाली इमामत किसी और को ना मिल जाए, हज़रत ईसा के फॉलोअर्स को ना मिल जाए और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स को ना मिल जाए। तकलीफ़ बस इतनी है, और उसके लिए सारे चालें वो चलते थे। तो ये चंद आयतें जो हैं इसमें अल्लाह ताला ने अहले किताब ख़ास तौर से यहूद की पूरी दास्तान को, उनके पूरे चालों को, पूरी साजिशों को चंद लफ्ज़ों में बयान कर दिया। बड़ी बड़ी किताबें अगर यहूद की तारीख पर पढ़ें, यहूद की साजिशों पर पढ़ें, तो आप इस तरह से खुलासा नहीं कर सकते जिस तरह से अल्लाह ताला ने कर दिया। आगे फरमाया कि कुल इन अल-फ़ज़ल बियदिल्लाह युतीहि मन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम। इनसे कह दो कि तुम्हारे इन साजिशों से ये काम नहीं रुक सकता कि इन लोगों को भी वो इमामत मिल जाए जो तुम्हें मिली हुई थी, तुम इसको रोक नहीं सकते इन साजिशों के जरिए से। फजल तो अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहता है दे देता, ठीक है, तो तुम इस तरह से नहीं रोक सकते, ये साजिशें तुम्हारी किसी काम की नहीं है। ये वो देख चुके थे मसीह बरादरी में भी, और ये बाद में उन्होंने इस्लाम में भी देखा कि ये साजिशें कुछ नहीं कर सकी। अलबत्त मसीहों के यहाँ जो सेंट पॉल के फॉलोअर्स हैं उनमें ये काफ़ी कामयाब रहे, बल्कि सेंट पॉल इन्हीं का आदमी था, उसने ईसाइत में एक नया रास्ता निकाला तो गोया ईसाइत को अगवा किया। ईसाइत का लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ फ़र्क करने के लिए, वरना हज़रत ईसा का दीन भी इस्लाम है, हज़रत मूसा का दीन भी इस्लाम है, हज़रत इब्राहिम का जुमला यहाँ आप सुन ही चुके हैं, वलाकिन काना हनीफ़ मुस्लिम। तो इन सारे अंबिया की जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद हैं वो सारे के सारे मुस्लिम थे। यहूदी नसरानी की तकसीम पहचान के लिए है बस। तो फरमाया कि तुम्हारे इन साजिशों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को इमामत के मिलने से तुम रोक नहीं सकते, ये फजल अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहता है देता है, वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह ताला बहुत वासे है और बहुत अलीम है। ये दोनों सिफात बड़ी दिलचस्प हैं। कि यहूद ये ख्याल कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने किसी और को इमामत दे दी तो अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी आ जाएगी, हमारी वाली इमामत छीन कर उनको देंगे। ठीक है, पता है कि नहीं, अल्लाह बहुत वसी है, कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह के लिए, वो एक टाइम पे हज़ारों कौमों को इमाम बना सकता है, कोई मुश्किल नहीं। और एक वासे का मतलब पहलू ये है यहाँ पर कि तुम समझ रहे हो कि जो उम्मी हैं उनको इमामत मिल जाएगी, नहीं, उम्मियों को भी अल्लाह ताला इमामत देने को तैयार हैं अगर वो इमामत के अहल हों। अल्लाह ताला घर में कोई कमी नहीं है, जिसको चाहता है दे सकता है। और अलीम ने तो कमाल कर दिया यहाँ पर कि मैंने पहले भी तुम्हें दी थी तो अपने इल्म की बुनियाद पर दी थी, और अब मैं बनी इस्माइल को दे रहा हूँ तो अपने इल्म की बुनियाद पर दे रहा हूँ, मुझे पता है ये इसके अहल है। ठीक, तो ये दोनों सिफात इस तरह से इस बात को समझाने के लिए हैं कि अल्लाह के जो फैसले हैं वो उसके अपनी वसअतों, अपनी कुव्वतों, अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर हैं। वो इस वजह से नहीं है कि तुम्हारे तरह का अल्लाह ताला के हाथ नहीं है, अल्लाह ताला का इल्म तुम्हारी तरह का नहीं है कि अल्लाह को पता ही नहीं चलता कि किसको देना है किसको नहीं देना। ठीक है, तो ये अब पूरी बात हो गई। इसमें अल्लाह ताला ने उनका जो साजिश का तरीका है वो बता रहे हैं। अब इन आयतों का जो अमूमी तौर पर मतलब लिया गया है वो मैं बता देता हूँ। अमूमी तौर पर जो मतलब लिया गया है वो ये कि ये वो बग़ैर जाने हुए करते थे, यानी वो साजिश के तौर पर मुसलमानों को गुमराह करने के लिए नहीं, बल्कि उनका तरीका ये था, वो खुद ऐसे बिगड़े हुए थे तो अपने आप को उनकी गुमराही के सबाब ये समझे जा रहे हैं कि वो क्यों गुमराह रह गए। वो इसलिए गुमराह रह गए कि वो सच्ची बातों को जानने के बावजूद इनकार कर रहे थे, यानी कट्टे काफिर हो गए थे, उनके यहाँ बातिल गड़बड़ हो गया था इसलिए वो नहीं मान पा रहे थे। ये मतलब नहीं है, वो मुसलमानों में गुमराही पैदा करने के लिए ऐसा कर रहे थे। आयत तो जो शुरू की है बदत ताइफ़त मिन अहल किताब, उसकी रोशनी में इसको देखना चाहिए। आगे फरमाए यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, अल्लाह अपनी रहमत को जिसके साथ चाहता है ख़ास कर लेता है और अल्लाह फजल वाला है बहुत ज़्यादा। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला अरबों करोड़ों इंसान हैं, उनमें से जिसके साथ चाहते हैं अपनी रहमत को ख़ास कर देते हैं। ये इस रहमत से मुराद वही का मामला है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुरैश को अल्लाह ताला ने अपनी वही के लिए, अपने नबी के लिए चुना है, तो अल्लाह ताला जिसके साथ चाहता है अपनी रहमत को ख़ास कर लेता है। यानी अल्लाह पर यह एतराज़ नहीं किया जा सकता कि उसने अरबों ही को क्यों चुना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों चुना, अहले किताब में से किसी को क्यों नहीं चुना, या कुरैश में से किसी और को क्यों नहीं चुना, ये एतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो जिसके साथ चाहता है अपने इल्म की बुनियाद पर, अपनी वसअतों की बुनियाद पर मामले को ख़ास कर लेता है, और अल्लाह ताला बड़े अजीम फजल वाला है। इसका मतलब है कि उसका फजल जितना चाहे दे दें किसी को ख़त्म नहीं होता, हमेशा है, दायमी है, उसमें कोई कमी नहीं आती, और जिसको भी दे दें अल्लाह ताला कोई कमी नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि मिसाल के तौर पर मेरी जेब में 100 रुपया तो मैंने 10 रुपये आपको दिए बाकी मेरे पास 90 रह जाएंगे, अल्लाह के पास तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए वो जब चाहते हैं जिसके लिए चाहते हैं ये मामला कर देते हैं, करते रहे हैं माजी में नबूवत के पहलू से, ख़ास तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब यह ख़ास कर लिया कि अब किसी को नहीं देनी। पहले यह था कि जिसको चाहते थे दे देते थे अपने इल्म की बुनियाद पर, अपने वसअत फ़ज़ल के एतबार से जिसको चाहते थे दे देते थे। तो यहाँ पर रोक लेते हैं बात को, टाइम भी हो गया हमारा।